مرکز نے دلی میں یو پی ایس سی کے امیدواروں کی موت کے کیس میں تفتیش کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اس معاملے پر شور و غل ہوا۔ سرکار نے بھارتی ساحلی گارڈ کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے 22 انٹرسپٹر کشتیاں خریدنے کی منظوری دی ہے۔ حزب اللہ کو اسرائیل کی طرف سے وارننگ دیے جانے کے بعد بھارت نے لبنان کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کا کہنا ہے کہ کواڈ ممبر اصولوں پر مبنی عالمی منظرنامہ اور بھارت بحر الکاہل خطے کے تحفظ کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اور پیرس اولمپکس میں مردوں کی بھارتی ہاکی ٹیم نے آج پول بی کے اپنے دوسرے میچ میں ارجنٹینا کے خلاف میچ برابری پر ختم کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزارت داخلہ نے دلی کے اولڈ راجندر نگر میں ایک کوچنگ سینٹر میں یو پی ایس سی کی تیاری کرنے والے تین امیدواروں کی موت کے واقعے کی چھان بین کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی حادثے کی وجوہات کا پتہ لگائے گی، ذمہ داری طے کرے گی، اقدامات کا مشورہ دے گی اور پالیسی میں تبدیلی کی سفارش کرے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت نے کہا ہے کہ کمیٹی میں شہری امور کی وزارت کے ایڈیشنل سیکرٹری، دلی سرکار کے پرنسپل داخلہ سیکرٹری، دلی پولیس کے اسپیشل سی پی، فائر ایڈوائزر اور دوسرے لوگ شامل ہوں گے۔ کمیٹی 30 دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ دلی کے کوچنگ سینٹر میں پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے یو پی ایس سی کے امیدوار طلبہ کی موت سے متعلق معاملہ آج لوک سبھا میں اٹھایا گیا۔ بی جے پی اور کانگریس نے اس کی تحقیقات کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ وقفہ صفر کے دوران بی جے پی کی ممبر بانسری سوراج نے مطالبہ کیا کہ امور داخلہ کی مرکزی وزارت اس معاملے کی جانچ کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کرے گی۔ کانگریس کے ششی تھرور نے بھی اس معاملے میں ایک جامع تفتیش کا مطالبہ کیا۔ سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو نے مطالبہ کیا کہ ان افسروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جو کوچنگ سینٹر چلانے کے لیے منظوری کا سرٹیفکیٹ دینے کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی جاننا چاہا کہ اب تک ان افسروں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے۔ راجیہ سبھا میں بحث کی شروعات کرتے ہوئے بی جے پی کے ڈاکٹر سدھانشو ترویدی نے اس حادثے کو مجرمانہ غفلت قرار دیا اور یہ بھی سوال کیا کہ دلی سرکار کی ایجنسیوں کے ذریعے نالیوں کی صفائی پر کتنے پیسے خرچ کیے گئے ہیں۔
ابھی جو گھٹنا ہوئی ہے وہ بہت ہردے ودارک ہے اور پیڑا دائک ہے کہ ایک سیلاب آیا جو تین بچوں کو کے جیون کو بہا کے لے گیا، ان کے پریوار کی آشاؤں اور آکانکھاؤں کو بڑھا کے لے گیا، مگر افسوس کی بات ہے کہ جن کے اوپر اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی ان کی آنکھوں میں ایک آنسو تو چھوڑیے، ان کے ماتھے پر شکن بھی نظر نہیں آئی۔
ٹی ایم سی کے ڈیریک اوبرائن نے بھی حادثے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی میں تعلیم کے معاملے پر صحیح توجہ نہیں دی گئی ہے۔ بحث کی شروعات کرتے ہوئے تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا کہ اس معاملے میں غفلت ہوئی ہے اور ذمہ دار لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ عام آدمی پارٹی کی سواتی مالیوال نے کہا کہ دلی سرکار کو مرنے والے سبھی نوجوانوں کو 1 کروڑ کا معاوضہ دینا چاہیے۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اسپیکر کے عہدے پر سوال اٹھانے کے لیے اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رہنما راہل گاندھی پر نکتہ چینی کی۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ جناب گاندھی کا یہ قدم جمہوریت اور آئین کو کمزور کرے گا۔
بہت ہی دکھ کی بات ہے، شری راہل گاندھی جی ایک سمویدھانک ویوستھا میں لیڈر آف اپوزیشن ہوتے ہوئے جس طرح کا ان کا ویوہار ہے، پارلیمنٹ میں جس طرح کی وہ بھاشا اپیوگ میں کرتے ہیں، سمویدھانک پد جو ادھیکش جی کا پد ہے اس پد کو بھی وہ کوشچن کرتے ہیں، یہ ڈیموکریسی کو سمویدھان کو کمزور کرنے والے ایکشنز ہیں۔
پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے لوک سبھا میں جناب گاندھی کے رویے کی مذمت کی کیونکہ اسپیکر ایوان کا محافظ ہے۔ جناب ریجیجو نے کہا کہ چونکہ راہل گاندھی اب اپوزیشن کے لیڈر بن گئے ہیں انہیں پارلیمنٹ کے اصول کے مطابق کام کرنا چاہیے۔
آج لوک سبھا میں نیتا پرتیپکش شری راہل گاندھی جی نے جس طریقے سے بھاشن دیتے سمے لوک سبھا اسپیکر کو اٹیک کیا اور نیم سے باہر جا کر کے جتنے بھی انہوں نے بات کی ہے میں اس کا کھنڈن کرتا ہوں۔
اڑان اسکیم کے تحت 13 ہیلی پورٹس اور 2 آبی ایروڈوم سمیت 85 ایئرپورٹ کو جوڑنے کے مجموعی طور پر 579 روٹس فی الحال کام کر رہے ہیں۔ آج راجیہ سبھا میں شہری ہوا بازی کے وزیر مملکت مرلی دھر موہول نے ایک تحریری جواب میں یہ بات بتائی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ مرکزی سرکار نے ملک بھر میں 21 نئے گرین فیلڈ ایئرپورٹ بنانے کی اصولی طور پر منظوری دے دی ہے۔ ان میں سے 12 گرین فیلڈ ایئرپورٹ پچھلے 10 سال سے کام کر رہے ہیں۔ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में मरकजी बजट 2024-25 के बाद की कॉन्फ्रेंस विकसित भारत की तरफ सफर के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भारतीय सनतों की कन्फेडरेशन सीआईआई कर रही है। इसका मकसद इस कोशिश में तरक्की के लिए सरकार के वसीतर नजरिए और सनत के रोल का खाका पेश करना है। इस कॉन्फ्रेंस में सनतों, सरकार, सिफारती बिरादरी और दानिश्वराना हलकों के 1000 से ज्यादा मंदूबीन वहां मौजूद रहकर शिरकत करेंगे, जबकि कई दीगर शुरका मुल्क भर में सीआईआई के मुख्तलिफ मराकज और बैरून मुल्क से भी वर्चुअल वसीले से इसमें शामिल होंगे। दिफाई सामान की खरीद से मुतालिक कौंसिल डीएसी ने जदीद तर्ज की 22 इंटरसेप्टर कश्तियां खरीदने की मंजूरी दे दी है, ताकि भारतीय साहली गार्ड की सलाहियतों को मजीद बेहतर किया जा सके। ये मेडिकल बचाव समेत साहली निगरानी और पेट्रोलिंग, तलाश और बचाव की कार्रवाईयों के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। इन किश्तियों के पास जल्दी से पता लगाने और आबी हदूद में कार्रवाईयां करने की सलाहियत है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में आज डीएसी की मीटिंग खत्म हुई, जिसमें खरीदारी की कई तजावीज मंजूर की गईं। वजारत दिफा और इंडिया लिमिटेड के कौमी स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने आज एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं, ताकि एमएसएमईज को सरमाया बाजार की रसाई फराहम की जा सके। इस मुफाहमतनामे का मकसद दिफाई शोबे में एमएसएमईज की रसाई करना है, ताकि एनएसई प्लेटफॉर्म एनएसई इमर्ज के जरिए उनके तरक्की के मंसूबे के पैदावारी सरमाए को बढ़ाया जा सके। ये प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ किस्म के सरमायाकारों से इक्विटी सरमाए के इजाफे के लिए नए और मुख्तलिफ इख्तियारात फराहम करता है। वजारत दिफा ने कहा है कि यह मुफाहमतनामा 5 साल के लिए होगा। इस मुद्दत के दौरान दोनों महकमे वसी पैमाने पर बेदारी की मुहिम चलाएंगे। भारतीय मियारात के ब्यूरो बीआईएस ने गोविंद बल्लभ भाई पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किया है, ताकि भारत में अपनी नौइयत का पहला स्टैंडर्डाइज एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म का कयाम किया जा सके। ये फार्म भारतीय मियारात के मुताबिक नई टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ किस्म के जरई तौर तरीकों के नफाज और टेस्टिंग के एक तजुर्बाती मरकज के तौर पर काम करेगा। वीआईएस के डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि यह शराकतदारी भारतीय मियारात को बरूएकार लाकर जरई तौर तरीकों को बेहतर करेगी, जिससे किसानों को फायदा होगा और जरई इख्तियारात में इजाफा होगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णु देवसाई और नायब वजीर आला विजय शर्मा के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री देही आवास योजना, महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम जैसे मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में जनाब चौहान ने बताया कि मरकजी सरकार छत्तीसगढ़ में हर गरीब के लिए सड़क और मकानात के फरोग के लिए पाबंदी अहद है, और मरकजी और रियासती सरकार मिलकर रियासत के अवामी बहबूद के कामों को पूरा करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लबनान के हिजबुल्ला ग्रुप के खिलाफ इसराइली वार्निंग की वजह से तनाजे में इजाफे के पेश नजर लबनान में भारतीय सिफारतखाने ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि लबनान में मौजूद भारतीय या वो लोग जो लबनान को सफर करने का मंसूबा बना रहे हैं, उन्हें बैरूत में सिफारतखाने के साथ राब्ते में रहना जरूरी है। एक्स पर एक पोस्ट में भारतीय सिफारतखाने ने बताया कि खित्ते में हालिया वाकयात के तनाजुर में भारतीय शहरियों को हिदायत की गई है कि वो एहतियात से काम लें और बैरूत में भारतीय सिफारतखाने के राब्ते में रहें। इसी दौरान इसराइल और मुसल्ला सियासी ग्रुप हिजबुल्ला के दरमियान बढ़ती कशीदगी के पेश नजर बैरूत से आने और जाने वाली बैन अलाक्वामी परवाजें या तो मनसूख कर दी गई हैं या उनमें ताखीर की गई है। लबनान की मिडल ईस्ट एयरलाइंस ने एक बयानिए में कहा है कि खतरात से बचाव के लिए प्रोग्राम में यह तब्दीली की गई है। हफ्ते के रोज इसराइली मकबूजा गोलान पहाड़ियों पर हमले के बाद, जिसमें 12 बच्चे और 9 उम्र अफराद मारे गए थे, यह एडवाइजरी जारी की गई है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड के इश्तराक से ही इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि भारत बहरुल काहिल खित्ता आजाद, खुला, मुस्तहकम, महफूज और खुशहाल रहे। आज टोक्यो में क्वाड की सरबराह मीटिंग के आगाज पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मेंबर मुल्कों ने आलमी सतह पर बहबूद के इकदाम करने का जो अहद किया है वो इस खत्ते से बाहर भी मुफीद साबित होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि सियासी मुफाहमत मुस्तहकम हो, इकतसादी साझेदारी को फरोग हासिल हो, तकनीकी इश्तराक को वसत मिले और अवाम से अवाम के राब्तों में तेजी आए। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस मीटिंग से यह वाजे पैगाम मिलना चाहिए कि क्वाड ग्रुप बरकरार रहेगा और मजीद फरोग हासिल करेगा। टोक्यो में क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग में डॉ जयशंकर के साथ जापान, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारजा ने भी शिरकत की। बिहार में नई दिल्ली आने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के डिब्बे आज सुबह इंजन से अलग हो गए और मुसाफिर बाल बाल बच गए। रेलवे हुकाम ने कहा है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीजन में खुदीराम बोस रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन का एक कपलिंग टूट गया। हुकाम ने कहा कि इस हादसे में कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ है। हादसे की इतला के बाद इंजन को ट्रेन से जोड़ा गया और इसे नई दिल्ली भेजा गया। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दरभंगा और नई दिल्ली के बीच चलती है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में शेरों के तहफ्फुज़ से मुतालिक कौमी अथॉरिटी की 25वीं मीटिंग की सदारत की। इस महकमे के वजीर ममलिकत कीर्ति वर्धन सिंह भी उनके हमराह मौजूद थे। जनाब यादव ने शेरों के तहफ्फुज़ में मुल्की तकनीक को बरूएकार लाने के इम्कान तलाश करने की जरूरत पर जोर दिया। वेनेजुएला में निकोलास मादुरोव ने तीसरी मर्तबा सदारती इंतखाब जीत लिया है। इलेक्टोरल काउंसिल के सरबराह एल्वेस अमोरोसो ने कहा कि कल वोटिंग के 80% वोटों में से सदर मादुरो ने 51% वोट हासिल किए हैं। वेनेजुएला के 21.6 मिलियन से ज्यादा शहरियों ने 10 सदारती उम्मीदवारों में से सदर निकोलास मादुरोव का इंतखाब किया है। दूसरी तरफ वेनेजुएला की अपोजिशन ने नतायज को धोखादही करार देते हुए सीएनई के ऐलान को मुस्तरद कर दिया और इसे चैलेंज करने का वादा भी किया। बांग्लादेश में हुकूमत हाल ही में मुल्कगीर सतह पर कोटे के निजाम में इसलाह से मुतालिक तहरीक कर पर मरकूज पुरतशद्दुद वाकयात में मारे गए लोगों की याद में कल एक दिन का सूख मनाएगी। यह फैसला आज एक काबिनी मीटिंग में किया गया जिसकी सदारत वजीर आजम शेख हसीना कर रही थीं। वजीर दाखला आजादुज्जमा खान के मुताबिक तशद्दुद के इन वाकयात में 150 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। पेरिस ओलंपिक में आज भारत के मर्दों की हॉकी टीम ने पूल बी के एक मैच में अर्जेंटीना के साथ मैच बराबरी पर खत्म किया। लुकास मार्टिनेज ने पहले हाफ में अर्जेंटीना के लिए गोल किया लेकिन कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने आखिरी मिनट के शुरुआत से पहले पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किया। इस तरह मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। भारतीय मर्दों की हॉकी टीम का अगला मुकाबला आयरलैंड के साथ होगा। मीडिया से बात करते हुए हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि टीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है लेकिन मजीद बेहतर करने की जरूरत है।
सब अपना हार्डवर्क कर रहे थे कि हम इस मैच को जीते और स्कोर करें, बट अगर ड्रॉ भी किया तो वो एज ए टीम हमने अचीव किया है। सबका योगदान है इसमें। जो फिनिशिंग है हमारी और बेहतर हो सकती है। हमारे ओपन जो शॉट्स हुए हैं हमारे और जो इतने सारे पीसी मिले हमें, आई थिंक नेक्स्ट मैच में हम इसको और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं।
भारत 6 टीमों पर मुश्तमिल पूल बी में 2 मैचों से 4 प्वाइंट हासिल करके तीसरे मकाम पर है। भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए पूल बी में 4th मकाम हासिल करना होगा। एक और खेल में भारत के मर्दों की तीरंदाजी की टीम तुर्की से हारकर क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई। भारतीय टीम में धीरज बोमा देवारा और तरुणदीप रॉय और प्रवीण जाधव शामिल हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मरकज ने दिल्ली में यूपीएससी के उम्मीदवारों की मौत के केस में तफ्तीश के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस मामले पर शोरगुल हुआ। सरकार ने भारतीय साहली गार्ड की सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने के लिए 22 इंटरसेप्टर कश्तियां खरीदने की मंजूरी दी है। हिजबुल्ला को इसराइल की तरफ से वार्निंग दिए जाने के बाद भारत ने लबनान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर का कहना है कि क्वाड मेंबर उसूल पर मबनी आलमी मंजरनामा और भारत बहरुल काहिल खत्ते के तहफ्फुज के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और पेरिस ओलंपिक्स में मर्दों की भारतीय हॉकी टीम ने आज पूल बी के अपने दूसरे मैच में अर्जेंटीना के खिलाफ मैच बराबरी पर खत्म किया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।